Good morning, everybody. Om Shanti. इस संसार में ना गुड मॉर्निंग है, ना गुड इवनिंग है, ना गुड नाइट है, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए चाहे वो नाइट है चाहे मॉर्निंग है, सभी गुड है, गुड ही गुड. सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी. आप सब भारतवर्ष से आए हुए सभी मेहमानों का, सभी अपने घर वालों का हम यहां दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं. आप लोगों के लिए तीन दिन का एक विशेष प्रोग्राम भ्राता पांडेमणि जी ने के मन में संकल्प में बहुत पहले से था कि कैसे हमारे स्टूडेंट्स जो वैल्यू एजुकेशन पढ़ करके आए हैं, वो सारी स्टडी करने के बाद आगे क्या करेंगे, आगे कैसे उनका प्रोग्राम बढ़ाया जाए. इसी संकल्पों को लेकर के उन्होंने एक कोर्स डिजाइन किया. उसी कोर्स का आज प्रथम क्लास और प्रथम सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं और उस कोर्स का टाइटल है बेसिक राजयोगा कोर्स. टोटल ये 42 घंटे का कोर्स है. इस 42 घंटे के कोर्स की बुक्स और सीडीज, ये सारी चीज भाई साहब आपको आगे बताएंगे कैसे कहां से हम ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. लेकिन इस ट्रेनिंग सत्र का पहला क्लास हम शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है बेसिक राजयोगा कोर्स. इस बेसिक राजयोगा कोर्स को हमारे बीच में लेने जा रहे हैं आदरणीय चित्रा बहन. चित्रा बहन वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के राजस्थान जोन को देखते हैं. राजस्थान में जयपुर में रह करके अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और सब जगह की सेवाएं, राजस्थान की सेवाएं आप देख रहे हैं. हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय चित्रा बहन जी को. आपको एक और जानकर विशेष खुशी होगी कि चित्रा बहन एक रिसर्च फेलो भी हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से मेडिटेशन रिसर्च करने के लिए 43 लाख का अनुदान या CSIR की तरफ से मिला हुआ है. और इस प्रोजेक्ट के द्वारा आध्यात्मिकता से, मेडिटेशन से कैसे हम डायबिटीज और मेडिटेशन से कैसे हाइपरटेंशन के इलाज को कर सकते हैं, कैसे इन दो दो बीमारियों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इस बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं. एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर वर्तमान में आप खोल रहे हैं. हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय चित्रा बहन जी को, बेसिक राजयोगा कोर्स के बारे में अपना व्याख्यान देंगे. वेलकम.
ओम शांति. फिर से एक बार जोर से बोलेंगे, ओम शांति. पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है. आप सब विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने वैल्यू एजुकेशन को पहले खुद पढ़ा, पहले समझा कि ये क्या चीज है, और आज आप इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम में इस लक्ष्य से आए हैं कि हमने जो सीखा है उसको और आगे दूसरों तक हम किस माध्यम से, किस तरीके से पहुंचाएं. तो आप सब वो आत्माएं हैं जिन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि हम सुधरेंगे, सुधर रहे हैं, और अपने जीवन को मूल्यवान, वैल्यूएबल बना करके औरों के जीवन को भी मूल्यवान बनाने की प्रेरणाएं देंगे. तो आप सब वो महान आत्माएं हैं जो अभी अपना विशेष समय निकाल करके 3-4 दिन की छुट्टी लेकर कोई बहुत दूर दूर से भी आए हैं, तो विशेष इस प्रोग्राम में सीखने के लक्ष्य से सेवाएं कैसे करें उस लक्ष्य से आए हैं. तो आपका फिर से इस आबू की पावन भूमि पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है. आज का हमारा पहला सत्र जो है वो है बेसिक राजयोगा कोर्स. ये जो आपका जो रेसिपी, जो मॉड्यूल बनाया है, राजयोगा इम्प्रूवमेंट एंड कॉन्शियसनेस प्रोग्राम फॉर एजुकेटर्स, ये आपका 42 आवर्स का एक सेट है, वॉल्यूम है, जैसा भाई साहब ने अभी बताया. तो इसका, इस वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक राजयोगा कोर्स, और इस फर्स्ट यूनिट के अंदर भी फिर 7 सब यूनिट्स हैं, वो हम सारे शॉर्ट में अभी यहां देखेंगे कि पूरा राजयोग आखिर क्या है, 7 दिन में क्या क्या, 7 चैप्टर्स में कौन कौन से पॉइंट्स यहां इंक्लूड हुए हैं. तो सबसे पहले है स्वयं के बारे में, एक्सप्लोरिंग द सेल्फ, कि हम कौन हैं. मूल्य की जो पहली डेफिनेशन है या मूल्यों को धारण करने की बात जो सबसे पहले आती है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है अपने आध्यात्मिक स्वरूप की सत्य पहचान, के आखिर वास्तव में हम कौन हैं. कौन हैं हम सब? आवाज नहीं आई. हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं हैं। और आत्मा कहां रहती है शरीर में? आंसर आपको देने हैं अभी, क्योंकि सबको आता है ना। आत्मा कहां रहती है? प्रकृति के बीच में अति सूक्ष्म चमकती हुई ज्योति, और वही मैं हूं, वही मैं आत्मा हूं, जो इस शरीर के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करती है। इन आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोल रहे हैं, हाथों द्वारा कर्म कर रहे हैं, और पांव द्वारा चल रहे हैं। तो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है आत्मा। फिर आत्मा के अंदर और क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है? मन आत्मा की विचार शक्ति है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होती है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय शक्ति है, डिसीजन पावर ऑफ द सोल। बुद्धि उस पर निर्णय करती है कि ये विचार सही है, ये बात सही है या नहीं है। तो बुद्धि क्या है? आत्मा की निर्णय शक्ति। और फिर है संस्कार। जिस तरह के कर्म हम बार बार करते हैं, जो हमारे बार बार जो चीज हमारी रिपीटेडली होती रहती है हमारे जीवन में, उसी तरह के हमारे संस्कार बनते जाते हैं। आत्मा एक अति सूक्ष्म प्रकाश का पुंज है, जिसे हम इन आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अभी सर्दियां थी तो सर्दियां दिखाई दे रही थी किसी को? नहीं दिखाई थी, पर फील हो रही थी, है ना। अभी लाइट जैसे इलेक्ट्रिकसिटी जो रोशनी हो रही है वो तो हमें दिखाई दे रही है, पर जो इलेक्ट्रिकसिटी यहाँ फ्लो हो रही है वायर्स में, वो हम नहीं देख सकते। ऐसे ही आत्मा एक चमकती हुई ज्योति है, जो इस शरीर को चलाती है, एक एनर्जी है, एक प्रकाश है। अब हम देखते हैं कि आखिर इस आत्मा में और शरीर में फर्क क्यों है। क्यों हम कह रहे हैं कि जब हमें आत्मा का ज्ञान होगा, जब हमें आत्मा की स्मृति होगी, तो वैल्यूज को धारण करना, गुणों को धारण करना हमारे लिए इजी होगा। क्योंकि आत्मा जीव है और ये शरीर एक वस्तु है, जिसको कह सकते हैं ये शरीर एक पांच तत्वों से मिलकर के बना पुतला है, और आत्मा इसमें चैतन्य शक्ति है, एनर्जी है, आत्मा प्रकाश है। और ये शरीर, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा सेल्फ अवेयर है, जागृत है, स्वयं के बारे में हमें स्मृति है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन इस शरीर को, इस पुतले को कोई स्मृति नहीं है, है ना। वो आत्मा को स्मृति है कि ये मेरा शरीर है, पर इस शरीर को बिना आत्मा के कोई भी फीलिंग्स नहीं है, कोई भी स्मृति नहीं है। आत्मा अमर है और ये शरीर टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए। अभी ये है, पिछले जन्म में कुछ और होगा, अगले जन्म में कुछ और होगा। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती है, लेकिन शरीर, आत्मा शरीर का आधार लेकर के कर्म करती है, लेकिन ये शरीर इस आत्मा का एक रथ है, व्हीकल है इस आत्मा का। सोल आत्मा इस शरीर को ऑक्यूपाई करती है, जैसे अभी हम आकर के सीट पर बैठे हैं ना, ऐसे आत्मा आकर के इस शरीर के यहाँ मस्तक में विराजमान होती है। लेकिन आत्मा के अंदर शरीर नहीं रह सकता, शरीर में आत्मा रहती है। मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा है, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मोबाइल है या कोई और चीज है, माइक है, हॉल है, घर है, वो सब चीजें मेरी है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर भी मेरा है, तो फिर मैं इसकी ओनर हूं और मैं हूं आत्मा। अब जब हमें आत्मिक स्मृति रहती है, अभी हमें समझ आया है कि मैं आत्मा हूं, और दूसरी समझ है कि मैं देह हूं। लेकिन अब हम जब अपनी कॉन्शियसनेस को बदल रहे हैं कि मैं आत्मा समझ के अब जब कर्म कर रही हूं, तो उसमें, और जब हम अपने आप को शरीर समझ के कर्म कर रहे थे, उसमें फर्क है। और वो फर्क क्या है? अब जब मैं आत्मिक स्मृति में कर्म करती हूं, तो आत्मा के जो सात मूल संस्कार हैं, वो हमारे प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं। और जब हम अपने को देह समझते हैं, तो जो विकार हैं वो सामने आते हैं। आत्मा एक, जिसको कह सकते हैं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा की स्थिति से चीजों को देख सकती है। लेकिन जब हम अपने को शरीर समझते हैं, तो हम खुद ही उस सिचुएशन में एंगेज्ड हुए हुए होते हैं। ठीक इसी तरह से और भी कई सारी चीजें हैं कि जब हम आत्मिक स्मृति में होते हैं, तो हमारे लिए सबकी हमारी सबके लिए जो भावनाएं हैं, सबके लिए जो दृष्टि है वो सम दृष्टि होती है, लेकिन जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो ये भाई है, ये बहन है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सारी भावनाएं भी आने लगती है। फिर है आखिर हु एम आई, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। जब आत्मा और शरीर मिलते हैं तो ये जीवात्मा के रूप में अपना पार्ट बजाते हैं। अब है आत्मा की इननेट क्वालिटी। हम सब जानते हैं कि आत्मा के अंदर 7 मूल गुण हैं। आप पिक्चर में देखेंगे तो देखेंगे एक सीढ़ी की तरह ये सारे गुण दिखाए गए हैं। तो आत्मा का जो पहला गुण है वो है ज्ञान। जैसे ही हमने कभी भक्ति में प्रार्थनाएं भी की है तो क्या किया है, सबसे पहले यही तो कहा है, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे, ज्ञान की रोशनी दे। अर्थात जब जीवन में ज्ञान होगा तो ज्ञान से जीवन में क्या आएगा, पवित्रता आएगी। ज्ञान के आधार से पवित्रता आती है और पवित्रता से शांति की उत्पत्ति होती है। कहते हैं पवित्रता शांति की जननी है। इसके बाद जहां शांति है वहां क्या होगा, आपस में प्रेम होगा, और जहां प्रेम होगा वहां पर सुख भी होगा। जिन परिवारों में आपस में प्रेम है, जहां प्रेम है तो वहां सुख भी होगा, और जहां सुख होगा तो सुख का ही उच्च स्वरूप क्या है, आनंद की अनुभूति। और उसके बाद जब ये सब कुछ आ गया, सुख शांति आनंद प्रेम आ गया, तो हमारी स्थिति कैसी हो गई, अब पावरफुल। तो ये मुझ आत्मा के 7 क्वालिटीज हैं और ये सब आत्मा में समाई हुई है। और धीरे ज्ञान से शुरुआत होकर के, ज्ञान फर्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेज क्या है उसकी, फीलिंग पावरफुल। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर देखा कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं जिसमें 7 गुण हैं, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति। अब मैं कौन सी आत्मा हूं, ये है अपने स्वमान को समझना, अपने सेल्फ एस्टीम को समझना कि मैं आत्मा तो हूं लेकिन कौन सी आत्मा हूं। दुनिया में बहुत सारी आत्माएं होती है ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा। तो हम अपने आप को किस तरीके की आत्मा समझ करके कर्म करते हहैं वो हम देखते हैं। देखिए 4 मेन सोर्सेज ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का यहां हम अर्थ देखेंगे स्वमान, कि हम स्वयं को क्या मान देते हैं, दूसरे हमें मान देते हैं या नहीं देते हैं, वो तो हम एवरी टाइम चेक करते रहते हैं, इसने मुझे पूछा इसने मुझे नहीं पूछा, लेकिन हम अपने प्रति क्या स्वमान रखते हैं। तो उसके लिए 4 आधार हैं। पहला है अचीवमेंट एंड अकम्प्लिशमेंट। हमारा स्वमान कब जागृत होगा, जब हम कुछ अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं अपने जीवन में और उन लक्ष्यों को प्राप्त करते रहें तो हमारा स्वमान जागृत होता है, हमारा स्वमान बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने अलार्म लगाया सुबह, मुझे रोज 4 बजे उठते हैं, आज मैंने सोचा मुझे 3 बजे उठना है और मैं पहले अलार्म के साथ में उठ गई, तो फील गुड होता है ना, सुबह उठते ही हमें अच्छा लगता है कि हाँ आज तो मैंने पहले अलार्म की पहली आवाज से ही हम उठ गए। तो ये क्या हुआ, सुबह पहली थॉट, पहला संकल्प ही हमें पावरफुल कर देता है कि हाँ मैं कुछ अच्छी हूं, मैं कुछ कर सकती हूँ, है ना, अभी पूरा दिन आज मेरे हाथ में, मैं समय पर उठ गई। तो ये है कि हम, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य रख करके उनको अचीव करते रहेंगे तो इससे हमारा स्वमान जागृत होता है। दूसरा है पर्सनल पावर, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंसेस। अब पर्सनल पावर मीन्स अब हमारी खुद की क्या शक्तियां हैं। जैसे अभी हम जब ज्ञान में आए हैं तो हमें परमात्मा के महावाक्य सुनने को मिलते हैं और वो रोज हमें कहते हैं तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम महान आत्माएं हो, तुम इस संसार को बदल सकते हो। इससे क्या हो रहा है, हमारा स्वमान हर दिन जागृत होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमें रोज 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 हमारा स्वमान बढ़ता है। उसी चीज को हम अब खुद, अभी हम सुनते हैं और फिर जब हम उसका खुद अभ्यास करते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक विशेष आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो हम अपने आप को कंट्रोल भी कर पाते हैं और दूसरे सिचुएशंस के आधार पर इजीली इन्फ्लुएंस ना हो कि कोई बात हो गई तो इन्फ्लुएंस हो गया, किसी ने कह दिया तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तो हम उसमें इन्फ्लुएंस ना हो, उसके लिए हम अपनी ये जो स्वमान है इसमें रहें, अपने पर्सनल पावर में रहें। फिर है बिहेवियर कंसिस्टेंट विथ वैल्यूज एंड बिलीव्स। बिहेवियर कंसिस्टेंट विथ वैल्यूज एंड बिलीव्स, अपने जीवन को मूल्य निष्ठ हम बना करके रखेंगे। जैसे कुछ कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा ना, इनके जीवन के तो कुछ उसूल हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए ये उन उसूलों को नहीं छोड़ेंगे। तो जब हम अपनी वैल्यूज पर टिके रहते हैं तो इससे हमारा सम्मान जागृत होता है। अगर हमने चाहे एक ही वैल्यू हो अपने जीवन में, चाहे एक ही वैल्यू हो, सत्यता की वैल्यू हो, चाहे पवित्रता की वैल्यू हो, तो हम उस वैल्यू पर, उस वैल्यू के आधार से कर्म करते हैं तो उससे हमारा सम्मान जागृत होता है, उससे हमारा सम्मान बढ़ता है। अपनी इमेज अपने लिए हम क्रिएट हायर करते जाते हैं कि हाँ, हम तो अपने उसूलों के पक्के और सदा उसी पर ही चलेंगे। फिर है एविडेंस ऑफ कंसर्न एंड बीइंग केयर्ड अबाउट। अभी हम यहाँ रोज ज्ञान सुनते हैं, आज सुबह भी आप सब में से किस किस ने मुरली सुनी है सुबह? हाँ, सबने सुनी है ना, बहुत अच्छा। मुरली की पहली लाइन क्या आती है? क्या आता है? मीठे बच्चे, है ना। और पूरी मुरली जब हम ध्यान से सुनते हैं, पूरा ज्ञान सुनते हैं, ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, क्या कोई ईश्वरीय साहित्य पढ़ते हैं, तो हमें पूरा पढ़ते समय भी क्या अनुभूति होती है कि परमात्मा हमसे प्यार करता है, है ना। हमें लगता है, प्रूव होता है कि हाँ, ईश्वर का मेरे से प्यार है, इसलिए ये सारी बातें मेरे लिए। और सबका अनुभव होगा कि जब हम वो ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे होते हैं तो जो हमारे मन में संकल्प होता है वही बात उसके अंदर, उसी का सॉल्यूशन, उसी से रिलेटेड पॉइंट आता है। तो ये प्रमाण है कि हमें भी ईश्वरीय प्रेम मिल रहा है। तो अब हमें सांसारिक प्रेम की, मनुष्य आत्माओं से प्रेम मांगने की, कोई हमें रिस्पेक्ट करे, कोई हमें प्रेम करे, उन इच्छाओं से हम मुक्त होकर के अपने सेल्फ स्वमान में रहते हैं कि हमें प्रेम करने वाला, हमें सम्मान देने वाला, हमें मान देने वाला, आगे बढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। फिर है सेवन वेज टू डिफाइन सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एस्टीम हम किसे कह सकते हैं? सेल्फ एस्टीम या स्वमान मना, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। हो सकता है कोई मेरे बारे में सोचता हो कि बहुत अच्छी है, कोई सोचता हो नहीं ये तो ऐसे ही है, कोई कुछ और सोचता होगा, कोई कुछ और सोचता होगा, पर उन सबकी सोच से ज्यादा मेरे जीवन पे किसका फर्क पड़ रहा है? मेरी सोच का, कि मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ, मेरे खुद के बारे में क्या विचार है। तो यही स्वमान है। कई बार लोग तो हमें बहुत मान देते हैं लेकिन पर्सन हम खुद ही फील करते रहते हैं, नहीं हम तो किसी लायक नहीं है, हम तो ये नहीं कर सकते। तो वो नहीं करना है, अपने स्वमान में रहना है। फिर है स्वमान या सेल्फ एस्टीम, मतलब हम जो भी कुछ करते हैं उसका ऑनेस्टली हम असेसमेंट करें कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो ऑनेस्ट असेसमेंट हो अपने ही कर्मों का, अपने ही एक्शंस का। फिर करेज टू ट्राई अगेन। कोई काम हमने शुरू किया, कुछ असफलता हुई, कुछ सफलता हुई, लेकिन हार खा के बैठ गए, ऐसा नहीं। बार 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 बार, स्वमान का मतलब ही ये है, सेल्फ एस्टीम का मतलब ही ये है कि स्थितियां परिस्थितियां आएंगी लेकिन हम उनको करेजियसली पार करते रहे। अगर हार खा के बैठ गए तो फिर तो वो स्वमान नहीं हुआ ना। फिर है सेल्फ एस्टीम इज द कन्विक्शन दैट यू आर कॉम्पिटेंट टू कोप विद द लाइफ चैलेंजेस। जीवन में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं हम सबको सामना करने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे वैसे भी जिसके जीवन में, जिसका स्वमान जितना ऊंचा है उसके जीवन में उतना ही ऊंचा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के साथ उतने ही ऊंचे चैलेंजेस भी है साथ में। ऐसा नहीं हो सकता कि लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और उसके साथ में डिफिकल्टीज बिल्कुल भी ना हो। हम अपने सेल्फ एस्टीम माना, हम अपने आप से अपने बारे में किस तरह की बातें करते हैं कि मैं कैसी हूँ, किस प्रकार की हूँ, मुझे कैसा होना चाहिए, क्या सुधार की जरूरत है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, कौन सी कमजोरियां हैं जिनको निकालने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये है स्वमान में रहना। फिर है अपनी खुद की ब्यूटी, खुद की यूनिकनेस, के हम ईच वन इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। हम कई बार सोचते ना, अरे नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता है ना, या ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई भी टास्क है और वो मुझे दी गई है, इसका मतलब आई एम द यूनिक वन। हर एक के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जो जिस स्थिति में अभी हम रह रहे हैं, जो जिस परिस्थिति में है, उसके लिए सबसे अच्छी परिस्थिति, सबसे अच्छी स्थिति वही है। कई बार हम सोचते हैं ना, हमारे तो घर में कोई ज्ञान में ही नहीं चलता, सिर्फ हम ही चलते हैं। इतना मुश्किल होता है सबको मनाना, सबको समझाना। अगर ये सब भी ज्ञान में चले ना तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं। हम जिस स्थिति में है, जिस पारिवारिक समावेश में है, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो हमारी घर की कंडीशंस है, जितनी पढ़ाई हमने की है, वो इस ड्रामा के अनुसार वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और यही हमारी यूनिकनेस है, है ना? कि एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। फिर है सेल्फ एस्टीम इज द कॉन्शियसनेस इन विच एन इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली वैल्यूज द इनर सेल्फ रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिस्पेक्ट इज वेदर द सेल्फ इज रिस्पेक्टेड एक्सटर्नली और नॉट। हम खुद खुद को मान दें, खुद को सम्मान दें कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे साथ में सर्वशक्तिवान है, मुझ आत्मा के अंदर 7 मूल गुण भी है। इन आधार से स्वयं को स्वयं सम्मान देना, दूसरे सम्मान दें या ना दें, चाहे दूसरे दे या ना दे, लेकिन हम अपने आप को मान और सम्मान दें। फिर है सेल्फ एस्टीम के ही 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है सेल्फ एफिकेसी और दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ एफिकेसी का मतलब हम ये कहेंगे, सेल्फ एफिशिएंसी शब्द से एफिकेसी वर्ड बना है, और एफिकेसी का मतलब यहां है कि हमारी किसी भी कर्म को करने की दक्षता, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कर्म करते हैं और हम बार बार दूसरे के अप्रूवल का वेट करते रहते हैं। एक कुछ किया, अच्छा दूसरे से अरे मैंने सही किया या नहीं किया, फिर कुछ किया अरे मैंने सही किया या नहीं किया, ठीक तो लग रहा है ना, ये ऐसे कर तो सकते हैं ना। तो ऐसी बार बार डिलेमास की सिचुएशन ना हो। अगर हमने ऑनेस्टी से वर्क ठीक किया है, हमारा स्वमान ठीक है, गलती होगी, दूसरे से करेक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे से करेक्शन नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, पर कोई कह दे आपने बिल्कुल ही रॉन्ग किया तो डिसअपॉइंट ना हो, हम वो स्थिति ना आए, उसको कहेंगे हम सेल्फ एफिकेसी। फिर दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट। हम जैसे हमने अभी भी बात की थी कि हम अपने आप को कितना मान देते हैं, पर सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बारीक लकीर के समान है। अगर हमने सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा हायर कर लिया तो हम क्या, हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ये काम तो मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकती हूँ, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, इतना बड़ा काम है, मैं तो इसको कर ही नहीं सकती हूँ। तो ये दोनों स्थिति के बीच की जो स्थिति है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि ना तो बहुत हायर जाना है और ना अपने आप को बिल्कुल लो लेकर जाना है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ ये मैं ही कर सकती हूँ, है ना। तो जो बीच की स्थिति है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर है सेल्फ एफिकेसी, हम बात कर चुके हैं। फिर है पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, अपने स्वमान को कैसे जागृत किया जाए, कैसे हम अपने आप को ताकतवर बनाए, है ना। तो द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली, हम जागृत होकर के जिए, संसार में क्या कुछ घटित हो रहा है, हमारे साथ क्या कुछ घटित हो रहा है, हमारे कर्म कैसे हैं, इन सब के बारे में हम जागृत होकर के रहें। ऐसे नहीं गलतियों पे गलतियां होती जा रही है, 10 साल बाद पता चला कि हम तो इतनी सारी गलतियां कर चुके हैं, अब बैठ गए निराश होकर कि अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम कॉन्शियसली जीवन जिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हम जागृत रहें, अवेयर रहें। फिर है सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करें। हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कम पढ़ा लिखा है और वो सारी जिंदगी इस बोझ में गुजार देता है कि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं ना इसलिए कुछ नहीं कर सकता, मैं कम पढ़ा लिखा हूं ना इसलिए मैं ये टास्क नहीं कर सकता। है किसी की हाइट कम है तो वो सारी जीवन यही सोचते रहते हैं कि हमारी तो हाइट कम है ना, हम सुंदर नहीं दिखते, हमारी तो हाइट कम है ना, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं कर सकते। मीन्स पूरा जीवन गुजर गया लेकिन जो सत्य था, जो अनचेंजेबल ट्रुथ था, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए अपने बारे में, है ना। मान लो अब ठीक है बड़े उम्र हो गई है, कम पढ़ाई की, तो पूरे लाइफ लॉन्ग तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे उसी समय ये काम कर लेना चाहिए था। कई लोग ऐसे ही अपनी कोई पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद कहते हैं मुझे ये कोर्स ही नहीं करना था, मुझे तो पढ़ना ही कुछ और था, बन गए डॉक्टर कहते हैं मुझे तो बनना ही इंजीनियर था। तो लास्ट तक भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए हमारी जो इनएफिशिएंसी है किसी भी कर्म को करने की, उसका कारण यही है कि हम स्वयं को जो है जैसे हैं उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आज हम अपने आप को जो है जैसे हैं जिस स्थिति परिस्थिति में है जिस जॉब में है जिस पढ़ाई में है जिस परिवार में है वही स्वयं को एक्सेप्ट करके और अपने जीवन को नई दिशा देंगे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि वो सब चेंज नहीं होगा। चेंज किसको होना पड़ेगा? मुझे ही चेंज होना पड़ेगा, है ना। फिर है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम खुद के लिए खुद जिम्मेवार हैं, खुद के जीवन के लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही जिम्मेवार है, हमारी सोच हमारे जीवन के लिए जिम्मेवार है। कोई भी स्थिति कोई भी परिस्थिति कोई व्यक्ति कोई भी हमारे जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। फिर है सेल्फ असर्टिवनेस, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ खुद को रखें और आगे बढ़ें। लिविंग पर्पजफुली, हमारे जीवन उद्देश्यपूर्ण हो। कोई जीवन में आपने देखा होगा जिसके जीवन में उद्देश्य है, वो निरंतर कई असफलताओं के बाद भी लगे ही रहते हैं क्योंकि जीवन में एक उद्देश्य है। उनको किसी भी जो उद्देश्य है बस उसी के पीछे दिन रात लगे रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कई बार असफलताएं मिली उन्हें भी, उन्होंने 5 मिसाइल्स की डिस्कवरी की, लेकिन फिर भी जो लक्ष्य था उसके पीछे निरंतर लगे ही रहे अपने स्वमान के साथ। फिर है पर्सनल इंटीग्रिटी, अपनी सत्य निष्ठा के साथ में अपना जीवन जिए, स्वयं के साथ भी सत्यता से रहे। अब है अगर हमारा स्वमान कम है तो उसकी निशानियां क्या है, साइंस ऑफ लो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बच्चा है और उसके सिर के ऊपर कितना, उसके पीठ पे कितना बोझा है। कहीं ऐसा ही तो हमारा जीवन भी नहीं है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो परफेक्ट ही नहीं हूं, है ना, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, मेरे से गलती जरूर होगी, देखना मुझे ये काम कहाँ है ना, मेरे से तो गलती होगी क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं ठीक से इसको करना। तो कहीं हम भी इस तरह के बोझ के तले तो नहीं जी रहे हैं और अपना जीवन व्यर्थ ही हमने भारी तो नहीं बना रखा है। दूसरा है कि नहीं मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूं, मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूं, मैं तो इतनी समझदार नहीं हूं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे कर सकती हूं, मैं परफेक्ट ही नहीं हूं, मैं ये काम कैसे कर सकती हूं। तो कहीं इस तरह के संकल्प तो हमारे मन को बोझिल ना किए हुए हैं, उसको चेक करेंगे और उनको निकालेंगे। अब देखिए लेवल्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, स्वमान की सीढ़ी है एक, आप ये देखेंगे सीढ़ी नुमा पिक्चर है। इसमें पहला है सेल्फ आइडेंटिटी कि मैं कौन हूं, कौन है हम सब, अभी हमने पढ़ा था कौन है हम सब, हम सब हैं आत्माएं। फिर दूसरा है सेल्फ एप्रिशिएशन, हम अपने आप को एप्रिशिएट करें कि हम जो भी हैं जिस स्थिति में हैं श्रेष्ठ हैं, ईश्वरीय संतान हैं, परमात्म शक्तियां हमारे साथ हैं, हमें इतना संसार का सर्वोच्च ज्ञान मिला हुआ है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। फिर है सेल्फ अप्रूवल, हम स्वयं को स्वयं ही अप्रूव करें, मतलब उस बात को एक्सेप्ट करके अप्रूव करें कि हाँ मैं हूं, ठीक है। फिर है सेल्फ वर्थ, स्वयं को स्वयं ही मूल्य दें, हम चाहते हैं दूसरा हमें वैल्यू करे, इनको इतनी तो वैल्यू होनी चाहिए थी ना हमारी, लेकिन क्या हम खुद अपनी वैल्यू करते हैं? हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारी वैल्यू करे, लेकिन क्या हम खुद अपनी वैल्यू करते हैं कि जो हम हैं अच्छे हैं। फिर है सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है सेल्फ रिस्पेक्ट कि हम अपना सम्मान आत्मसम्मान करें। फिर है सेल्फ एक्सेप्टेंस, वही है कि अपने आप को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। फिर जब हम स्वयं को सारी चीजें देख ली, मैं कौन हूं कैसी हूं, अपने आप किस तरह का अपने आप को रिस्पेक्ट भी दिया, अप्रूव भी किया, एक्सेप्ट भी किया, तो इन सबसे क्या आता है, कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये गुण हैं, ये शक्तियां हैं और ये 3-4-5 कमजोरियां हैं जिनको मुझे निकालने के लिए मेहनत करनी है। और इससे फिर हमारे कुछ जीवन के बिलीफ बनते हैं, हमारे खुद के कुछ उसूल बनते हैं जिसके आधार से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। फिर थर्ड है जो इसका राजयोग का जो तीसरा पड़ाव है, हमने फर्स्ट देखा मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। सेकंड चीज हमने देखी, मैं कैसी आत्मा हूं, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, एक महान आत्मा हूं, एक विशेष आत्मा हूं। मैं कैसी हूं, श्रेष्ठ हूं, महान हूं, मैं सक्षम हूं, समर्थ हूं। थर्ड है, अब मैं किसकी हूं, मैं आत्मा किसकी हूं, तो मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। लेकिन आखिर वो परमात्मा है कौन, किसे हम परमात्मा कहेंगे? परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको हर एक धर्म संसार का स्वीकृति दे कि यही है, तो परमात्मा है तो यही है। पिक्चर में आप देखेंगे कि सर्वधर्मों के सर्वधर्म आत्माएं जिसको स्वीकृति दे कि यही परमात्मा है, हम उसे ही परमात्मा कहेंगे। कि कुछ पैरामीटर्स हैं, पांच पैरामीटर्स हैं, जैसे कसौटी होती है ना सोने को चेक करने के, कुछ कि ये सच्चा सोना है या नहीं है, ऐसे ही परमात्मा कौन है ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक कसौटी है, वो है पैरामीटर्स हम देख रहे हैं। सबसे पहला है कि परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो। दूसरा है, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, अर्थात जिसका खुद का कोई मात पिता शिक्षक सतगुरु ना हो, वही सर्व आत्माओं का मात पिता शिक्षक सतगुरु हो। मतलब माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ तो माता उनसे बड़ी हो गई ना, अर्थात परमात्मा ऐसा होगा जिसकी ना कोई माँ है ना कोई पिता है, वो खुद ही सबसे ऊंचा हाईएस्ट सर्वोच्च है। फिर है तीसरा पैरामीटर है, परमात्मा किसको कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो ज्ञाता हो उसे परमात्मा कहेंगे। जो सिर्फ प्रेजेंट एक काल का ज्ञाता हो उसे परमात्मा नहीं कहेंगे, जो त्रिकाल ज्ञाता हो, त्रिकाल दर्शी हो, त्रिमूर्ति हो और त्रिलोकी नाथ हो उसे परमात्मा कहेंगे, जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो। फिर है परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि है, सर्व चक्रों से परे है, जो इस काल चक्र से परे है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, जो सुख और दुख के चक्र से परे है, उसे हम क्या कहेंगे कि यही परमात्मा है। इसके बाद है पांचवा पैरामीटर है कि परमात्मा किसे कहेंगे जो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों में संपूर्ण हो, संपूर्ण भंडार हो, जिसके लिए परमात्मा की महिमा में कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ तो भी महिमा नहीं लिखी जा सकती, उसको हम परमात्मा कहेंगे। परमात्मा हर गुण और शक्तियों में अनंत है, उसका उसके पास जो कुछ भी है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो स्नेह हो, चाहे वो शांति हो, लेकिन वो इतना हो उसके पास अनलिमिटेड कि वो किसी को कितना भी दे दे उसके बावजूद भी कभी कम ना हो, उसको कहेंगे हम परमात्मा। तो अब ये पांचों जो पैरामीटर्स हैं ये किस पर सेट हो, अब जिस पर ये सब चीजें सेट हो उसे ही तो परमात्मा कहेंगे। तो ये सब एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव पर ही सारी महिमा लगती है, जिसको अनेक धर्मों के लोगों ने, किसी ने गॉड, किसी ने लाइट, किसी ने नूर, किसी ने ज्योतिपुंज, अलग अलग नामों से उसको याद किया, उसकी पूजाएं करी है। तो उसका परमात्मा का नाम है शिव, उसका रूप क्या है, निराकार ज्योति बिंदु, वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, कोई शरीर नहीं है, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है, वो एक प्रकाश का पुंज परमात्मा निराकार है। परमात्मा कहाँ रहते हैं, परम धाम में, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, क्योंकि अभी हमने देखा था सर्वोपरि अर्थात इस सृष्टि चक्र में ना आए, तो इस सृष्टि चक्र के पार, पांच तत्वों की दुनिया के पार जो छठा तत्व है, ब्रह्म है तत्व, वहां परमात्मा निवास करते हैं अपने ज्योतिर्बिंदु निराकार स्वरूप में। फिर है परमात्मा का इस सृष्टि पर कौन से समय पर अवतरण होता है, किस काल में परमात्मा इस सृष्टि पर हम सबके सामने आते हैं, तो वो समय होता है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, उस समय को हम कहते हैं कल्याणकारी संगम युग। और परमात्मा आकर के उस कल्याणकारी संगम युग पर आकर के इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य करते हैं। हम सब पतित आत्माओं को ज्ञान और योग के आधार से पावन बनाते हैं, इस पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। तो ये है परमात्मा का परिचय कि परमात्मा किसे कहेंगे, जो सर्वधर्म मान्य हो, जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वोपरि हो, जो सर्वोच्च हो और जो सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत हो, उसे हम परमात्मा कहेंगे। अब आखिर उस परमात्मा के साथ में, उस ईश्वर के साथ में हमारा क्या संबंध है? क्या वो हमारी माँ है, वो हमारा पिता है, वो हमारा दोस्त है? कौन सा संबंध उसके साथ है? तो परमात्मा एक ही ऐसा है जो हमारे सर्व संबंधों को निभा सकता है एक ही बार में। हमारी माँ भी वह है, वो पिता के रूप में भी हमारा उसके साथ में संबंध है, वो हमारा गाइड भी है, टीचर भी है, फ्रेंड भी है। और एक बहुत सुंदर नाम है जो हम यूज करते हैं, वो कौन है? दिलाराम, कंफर्टर ऑफ हर्ट्स, दिल को आराम देने वाला। दुनिया में कहते हैं ना कि कोई जो खास दोस्त होता है उसको कहते हैं, अपने दिल की सारी बात उसको बता देते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, ये बातें किसी को बताना मत। लेकिन उसका भी कोई खास दोस्त होता है तो वो बता देता है। लेकिन परमात्मा एक ऐसा दोस्त है, ऐसा दिलाराम है, उसे हम जो भी बात बोलेंगे वो कभी भी कहीं पर भी आउट नहीं होगी और उसका सोल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। और वही हमारा सच्चा साजन भी है। और परमात्मा के साथ में एक विशेष संबंध और भी होता है, वो है बच्चे के रूप में संबंध, कि हम उसे अपने बच्चे के रूप में भी परमात्मा को याद कर सकते हैं, उससे संबंध जोड़ करके वो अनुभूति कर सकते हैं। फिर ये है परमात्मा के अनेक गुण और उनकी महिमा। अब हम देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में देखा मैं कौन हूँ, सेकंड में देखा मैं कैसी हूँ, थर्ड में देखा मैं किसकी हूँ। अब चौथे चैप्टर में हम देखेंगे कि इस काल चक्र में मेरा क्या पार्ट है, कैसे हम आत्माएं इस काल चक्र में पार्ट बजाती है, कालातीत सत्य क्या है वो हम देखते हैं। कि जब इस सृष्टि की स्थापना हुई थी लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये सृष्टि क्या थी? ये सतयुगी दुनिया थी, एक सोने की दुनिया थी, जिसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। याद करते हैं आज भी कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, वहां देवी देवताओं का राज्य था, हर आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, संपूर्ण निर्विकारी थी। और आत्मा जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं संपूर्ण होती है, तो इसी तरह हर एक आत्मा अपने गुणों और शक्तियों में संपन्न थी, संपूर्ण निर्विकारी थी। तो ऐसी दुनिया वो थी जहां देवी देवताएं राज्य करते थे, एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, गाय और बकरी, एक गाय बकरी शेर सब एक घाट पर पानी पिया करते थे। हम सब उसी दुनिया से आज धीरे 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 यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम सब कभी इसी दुनिया के रहवासी थे, हम सब देवी देवताएं कहलाते थे, क्योंकि आत्मा कैसी थी उस समय पर? सतो प्रधान थी, तो शरीर भी सतो प्रधान था और ये प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान थे। सब कुछ एकदम ऑर्डरली था, एक बहुत सुव्यवस्थित दुनिया थी, जिसको हम कहते हैं सतयुग, जो इस सृष्टि का, इसको कह सकते हैं हम, सवेरा था, आदिकाल था इस सृष्टि का। उसके बाद आया सतयुग के बाद आया त्रेता युग, जिसको सेमी स्वर्ग भी कह सकते हैं, सिल्वर एज भी कह सकते हैं। आत्मा की 16 कलाओं से कलाएं थोड़ी सी कम हो गई। आत्मा जो सतो प्रधान थी, उसमें जो प्रधानता थी, वो प्रधानता अब खत्म हो गई, आत्मा सिर्फ सतो रह गई और कुछ कलाएं कम हो गई। सूर्यवंशी घराना हुआ था सतयुग में, फिर त्रेता में आके वो कौन सा घराना हो गया? चंद्रवंशी घराना। यहाँ क्षत्रिय वंशी हो गई आत्माएं। फिर इसके बाद आता है कॉपर एज, जिसको हम कह सकते हैं शाम का समय। जो सृष्टि चक्र जब शुरुआत हुई तो सवेरे में आया सतयुग, फिर उसके बाद आया त्रेता युग, फिर शाम होते होते द्वापर युग। द्वापर युग में आत्माएं देह अभिमान में आ गई। जब सतयुग में थे तो ये स्मृति नहीं थी कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, तो विकार नहीं थे, और विकार नहीं थे तो दुख नहीं था। लेकिन जैसे ही द्वापर युग में आए तो आत्माओं के अंदर देह अभिमान आया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और उस देह अभिमान के कारण वाम मार्ग में गए, विकारी बने, और जब विकारों का आधार लिया तो दुख हुआ, और दुख हुआ तो फिर भक्ति शुरू की। तो द्वापर युग से हम मनुष्य आत्माओं ने अनेक देवी देवताओं की भक्ति शुरू की, पहले शिव की शुरू की, फिर उसके बाद और देवी देवताओं की भक्ति शुरू हुई, और उसके बाद आया कलयुग, जहां हम देख रहे हैं चारों ओर आग लगी पड़ी है, कलह कलेश की अग्नि आज इस कलयुग में चारों ओर फैली हुई है। ये कलयुग अर्थात रावण राज्य, रावण के बारे में क्या कहते हैं, पांच विकार स्त्री के, पांच विकार पुरुष के, तो रावण के 10 शीश दिखाए गए हैं। तो ये कलयुग के अंत की निशानियां हैं। एक कलयुग के अंत की निशानी में एक बहुत अच्छी निशानी सुनाते हैं कि कब समझें कि हम ये कलयुग है। और तो एक निशानी है कि जब चार कुओं का पानी मिलकर के भी एक कुएं को ना भर पाए तो समझ जाना कि ये कलयुग है। इसका भावार्थ ये है कि पहले जब सब कुछ ठीक था तो क्या होता था, एक पिता अपने चार बेटों की, अपने बड़े परिवार की पालना कर सकता था, कर रहा था। लेकिन आज के समय पे अब सब आप समझ गए हैं कि वो चार मिलकर के भी एक माँ बाप का सहारा नहीं बन पाते, तो वो चार कुएं मिलकर के भी एक कुएं को नहीं भर पा रहे हैं। तो ये कलयुग की निशानियां भी हमारे सामने हैं। ऐसे समय पर ही जो परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, तो ऐसे समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर साकार मनुष्य तन का आधार लेकर के अवतरित होते हैं और फिर से गीता का ज्ञान देते हैं, जिससे नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना होती है। हम सभी आत्माओं को राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को पावन बनाते हैं। आत्मा फिर से अपने जो ओरिजिनल 7 गुण थे उनको अपने अंदर भरती है परमात्म याद से, और इस संसार को नई सतयुगी दुनिया बनाती है। परमात्मा ये कर्तव्य करते हैं संगम युग पर आकर के, कि इस कलयुग को फिर से सतयुग बनाते हैं, पुरानी दुनिया को फिर से नया बनाते हैं। अब देखिए, दो फोटोज आप देख रहे हैं, एक है कलयुग और एक है सतयुग। तो हम सब उस सतयुग से चले 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 आज इस अंतिम जन्म में, 84वें जन्म में कह सकते हैं, अंतिम जन्म में हम कलयुग के अंत के बाद अभी हम सब कहां हैं, संगम युग पर। और अभी हमें क्या करना है, हमें खुदाई खिदमतगार बन के इस कलयुगी दुनिया को फिर से सतयुगी बनाना है। फिर है, अभी हमने देखा कि हम आत्माएं कैसे इस काल चक्र में पार्ट बजाती है। अब इसके साथ है कि अब जब हम इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजा रहे हैं तो हमारे साथ में संसार के कुछ शाश्वत सत्य है, ऐसे कानून है, ऐसे नियम है जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। संसार के जो नियम है, शाश्वत नियम है, वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अब वो कौन कौन से नियम है इसको हम देख सकते हैं। मीन्स चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, परिवर्तन संसार का नियम है। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो आज नहीं है। पहला जो नियम है जो हम सबके साथ काम कर रहा है, चाहे हमें पता हो चाहे ना हो, वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी अगर कहीं पर भी कोई भी इफेक्ट आया है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। अब जैसे आप ये पहले पिक्चर में देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने सिर्फ एक जो बुक रखी थी उसको हल्का सा हिलाया तो क्या हुआ, एक 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 करके सारी बुक्स गिरने लगी। लेकिन अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो बुक कहां गिर रही है, उसी के सर के ऊपर आके, दिख रहा है ना, आगे से उसने एक बुक खिसकाई और वो लास्ट तक जो चेंज आया है, जो उस कॉज के कारण जो इफेक्ट आ रहा है, वो इफेक्ट कहां आ रहा है कि वो बुक कहां गिर रही है, उसी के घूम फिर के उसी के सर के ऊपर। अर्थात जो भी हम करेंगे वही हमारे पास में लौट कर आएगा। इसको हम न्यूटन के सेकेंड लॉ की तरह भी, न्यूटन के लॉ की तरह भी देख सकते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारे पास में लौट कर आएगा। दूसरा है लॉ ऑफ परफेक्ट जस्टिस। संसार में हम कई बार सोचते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ वैसा क्यों हुआ, लेकिन इस संसार में हर एक के साथ में संपूर्ण न्याय होता है। एक कहानी आपको सुनाते हैं छोटी सी। एक बार दो दोस्त थे। अब उन दोनों दोस्तों में एक जो था वो थोड़ा ऑनेस्ट था और जो दूसरा था वो थोड़ा सा ऐसे ही कह सकते हैं हम डिसऑनेस्ट था या बेईमान था। तो एक बार वो दोनों रास्ते से गुजर रहे थे और उन्हें रास्ते में एक पर्स मिला, उस पर्स में 1000 रुपए थे। तो अब दोनों दोस्तों ने देखा था वो, तो जो जो उनमें से जो जिसको हम कहेंगे जो बेईमान था, उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है अब अपन दोनों ने इसको देखा है ना मिलके, तो अब 1000 रुपए हैं, 500 तू रख 500 मैं रखता हूँ। तो जो ऑनेस्ट था उसने कहा अरे किसी का गिर गया होगा आज, जिसको सैलरी मिलेगी छोड़ दो तुम, या पुलिस में दे देते हैं, उसने रिपोर्ट कराई होगी तो वो आके ले जाएगा। उसने कहा अरे ये तो अपने नसीब का मिला है इतनी मुश्किल से, उसके नसीब में तो था नहीं, उसके नसीब में होता तो उससे घूमता क्यों, ये तो अपने नसीब का है, तेरे को रखना है तो रख, नहीं तो सारा मैं रख लूंगा, है ना, पुलिस वालों को देंगे। अब ध्यान से देख ले तो उसके नसीब में तो था नहीं, अब अपन भी नहीं रखेंगे, पुलिस वालों को देंगे, फिर पुलिस वाले खुद खा जाएंगे, क्या फायदा, तू रहने दे मैं तो खुद ही रख लेता हूँ। ठीक है, उसने रख लिया, उसको 1000 रुपए मिल गया, उसने तो उससे बहुत फायदा उठाया, बहुत कुछ अपने ऐश आराम किए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो ईमानदार दोस्त था उसमें से, उसके पैर में कांटा चुभा तो उसको खून आ गया। तो ऊपर से आकाश से कुछ देवताएं विचरण कर रहे थे और वो देवताएं ऊपर से ये सारा खेल देख रहे थे कि इसने पर्स उठाया फिर भी वो खुश है, उसको मौज हो रही है, और इसने तो ईमानदारी की फिर भी इसके पैर में कांटा चुभ गया। तो वो सारे देवताएं मिलके परमात्मा के पास गए, कहते हे प्रभु ये आपके संसार में क्या हो रहा है, ईमानदार व्यक्ति के साथ तो अन्याय हो रहा है और जो बेईमान है उसके साथ में सब अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने कहा आपका चित्रगुप्त ना सही अकाउंट्स नहीं रखता है, उसको बुलाओ एक बार, उससे पूछो उसने गड़बड़ कर दी कहीं पर। तो परमात्मा ने कहा नहीं, मेरा चित्रगुप्त तो एकदम राइट एक्शन मतलब एकदम राइट अकाउंट्स रखता है। तो उन्होंने उसको बुलाया, अब चित्रगुप्त से पूछा कि बताओ इन दोनों का हिसाब किताब। तो उस चित्रगुप्त ने बताया कि जो व्यक्ति बेईमान था जिसने 1000 रुपए जिसको मिले थे उसके उसने पहले का अकाउंट चेक किया तो उसको पता चला कि ये पहले एक बहुत ईमानदार व्यक्ति था, और जो ईमानदार होगा उसके जीवन में परीक्षाएं भी आएगी उसकी ईमानदारी को चेक करने के लिए, तो वो सारी परीक्षाओं में पास हो गया था, लेकिन जो अंतिम परीक्षा आई थी ना उसके जीवन में उसकी ईमानदारी उसकी सत्यनिष्ठा को चेक करने के लिए, उस समय उसने अपना धैर्य खो दिया और उस दिन से उसने निर्णय किया था कि आज से मैं ईमानदारी से काम नहीं करूंगा, और वो उसी दिन से उसने अपने कार्य व्यवहार में बेईमानी से चलना शुरू किया। तो उस चित्रगुप्त ने बताया कि ये जो इसको उस ईमानदारी का फल इसको बहुत बड़ी प्रारब्ध मिलने वाली थी, लेकिन बाद में इसने जो बेईमानी के कारण पाप कर्म किए हैं तो वो सारी प्रारब्ध उसकी कम हो गई, अब वो सिर्फ इतनी सी रह गई थी कि इसको सिर्फ 1000 रुपए उसका रिटर्न में मिला। और जो दूसरा व्यक्ति था वो पहले बहुत बेईमान था और उसके सिर पर उस बेईमानी का इतना बोझा था उसके सिर के ऊपर कि उसने भी एक बार ऐसे ही डिसाइड किया कि नहीं अब से मैंने, उसको जिस दिन कभी समझ आई कि नहीं बेईमानी से नहीं चलना चाहिए, उस दिन से उसने कसम खाई कि मैं आज से अपना सारा धंधा ईमानदारी से करूंगा। तो उसके सिर के ऊपर उस इतने लंबे समय की बेईमानी का जो पाप था अब ईमानदारी से चलने के कारण वो पाप इतना सा रह गया था उसका अकाउंट कि सिर्फ वो एक कांटा चुभने से चुकतू हो गया। तो ये है। तो फिर चित्रगुप्त ने बताया कि ईश्वर के घर में क्या है, देर है परंतु अंधेर नहीं है, सबके साथ में संपूर्ण न्याय है। हमें स्थिति परिस्थिति सामने से देखने पे लग सकती है कि इसके साथ अच्छा हो रहा है इसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन न जाने कितने जन्मों के हिसाब किताब हमारे साथ में है और किस जन्म के हिसाब किताब के कारण आज हम इस स्थिति में है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और याद आता है भीष्म पितामह के बारे में। एक बार उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु मुझे बताइए कि मैं कौन से कर्मों की सजा भुगत रहा हूं जो मुझे कांटों की शैया पर तड़प तड़प के जीना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण ने उसको कहा कि तुम तो अपने पिछले जन्मों को देख सकते हो, तुम्हारे पास तो दिव्य दृष्टि है, देखो किस जन्म के कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। तो उसने अपने कई सारे जन्म देख लिए, जहां तक उसके पास दिव्य दृष्टि थी जितने जन्मों को देखने की उन्होंने सारे देख लिए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु मुझे तो ऐसा कोई कर्म नहीं नजर आया जिससे ये मुझे उसका भुगतना पड़ रहा है। तो फिर श्री कृष्ण ने उनको और वरदान दिया दिव्य दृष्टि का। तो जैसे ही वो एक और जन्म आगे गए और पीछे गए एक और जन्म, तो जब उन्होंने देखा तो उस जन्म में वो किसी आर्मी के वो थे, राजा थे वो कहीं के, और वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप आया था और उनका जो सेनापति था उसने उनको कहा कि हे राजन, वहां तो इतना बड़ा सांप है तो आप उसको हटाइए, नहीं तो हम आगे कैसे जाएगी हमारी सेना। तो उस समय भीष्म पितामह ने उस सांप को एक लाठी में लेकर के और ऐसे साइड में डाल दिया था झाड़ियों में, और वो झाड़ियां थी कांटों की, और वो सांप वहां उतने ही दिन उतने ही समय तक तड़पता रहा, क्योंकि जैसे ही वो सांप निकलने की कोशिश करता था तो उसके कांटे और ज्यादा लगते थे। तो जितना समय वो सांप वहां पर कष्ट को पाया उतना ही समय कहते हैं कि भीष्म पितामह ने भी कांटों की सैया पर ही अपना जीवन गुजारा। तो हम नहीं समझ सकते कि हमारे कौन से कर्मों का हिसाब किताब हमें आज मिल रहा है। तो इस संसार में जो सृष्टि नाटक रंगमंच है, इसमें हरेक के साथ में संपूर्ण न्याय की नूंद है। जो किया है वही आज हमारे साथ में किसी न किसी रूप से हो रहा है। फिर एक है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम कहेंगे डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस मींस कोई अव्यवस्थित स्थिति। तो ये एक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हम साइंस में पढ़ते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस नियम के अनुसार संसार की हर एक चीज पहले व्यवस्थित होती है और फिर धीरे 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 वो ऑर्डर से धीरे धीरे समय के साथ में वो डिसऑर्डर हो जाती है। कोई भी सिस्टम है वो पहले ऑर्डर्ड होता है, धीरे धीरे समय के साथ में वो सिस्टम डिसऑर्डर्ड हो जाता है। एंट्रोपी मीन्स होता है डिसऑर्डरनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। कि जब इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब ये संसार सतयुग था तो हम कहेंगे उस समय एंट्रोपी क्या थी, जीरो थी, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड था, व्यवस्थित था, सुगठित था। लेकिन धीरे 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 समय के साथ 5000 वर्ष में धीरे धीरे उस सिस्टम की पूरी एंट्रोपी बढ़ गई और वो जीरो से एंट्रोपी कहां तक पहुंच गई, वन तक। और वन तक एंट्रोपी पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, वो धीरे 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 समय के साथ ऑटोमेटिकली हो गई। लेकिन अब इस वन एंट्रोपी को फिर से जीरो पे कैसे लाएंगे, तो उसके लिए एक दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ नेग एंट्रोपी। लॉ ऑफ नेग एंट्रोपी का मतलब है कि जब कोई भी सिस्टम ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाता है तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, समय के साथ साथ उसकी गुणवत्ता कम होती है, ऑर्डर से डिसऑर्डर होता जाता है। लेकिन अगर उसको फिर से ऑर्डर में करना है तो किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होती है, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। तो अभी सतयुग से कलयुग तक तो ये संसार ऑटोमेटिकली धीरे 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 हम सब आत्माएं पहुंच गई, लेकिन अभी हम सबको कलयुग से फिर से सतयुग में जाना है, संसार को फिर से कलयुग से सतयुग बनाना है, तो उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी स्वयं परमात्मा परमधाम से आते हैं, हमें राजयोग के द्वारा शक्तियां देते हैं जिससे हम अपने जीवन को बदलकर इस संसार को भी बदलते हैं। तो ये है एंट्रोपी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पानी के बकेट के अंदर हमने एक पत्थर डाला तो क्या होगा, उसकी जो लहरें बनेगी गोल गोल गोल, जो रिपल्स बनेंगे सर्कल्स, वो धीरे धीरे बनेंगे। लेकिन जैसे ही वो वॉल के टच होके आएंगे वापस तो फटाफट से आ जाएंगे। तो जैसे ऑर्डर से डिसऑर्डर होने में, जीरो से वन एंट्रोपी होने में तो कितना समय लगा, 5000 वर्ष, लेकिन अब इसको वन से जीरो पे जाने में कम समय लगता है, क्योंकि उसमें अभी हम एक्सटर्नल एनर्जी दी जा रही है, स्वयं परमात्मा आकर के उसको फोर्स भरते हैं उस कार्य को। फिर है इस संसार में जो भी कुछ होता है वो किस तरह से होता है, साइक्लिक नेचर में। इस नेचर में, इस प्रकृति में जो कुछ भी होता है उसकी क्या विधि है, वो है सब साइक्लिक, चक्र की फॉर्म में होता है। चाहे वो वाटर साइकिल हो, चाहे वो सीजन्स का साइकिल हो, ऋतु चक्र हो, जल चक्र हो, सृष्टि चक्र हो, हमारे जीवन और मृत्यु का चक्र हो, कि हम बचपन बुढ़ापा, बचपन जवानी बुढ़ापा, फिर अगेन बचपन जवानी बुढ़ापा, तो ये सब साइक्लिक फॉर्म में चलता है। लेकिन ये कितने साइकिल्स चल चुके हैं, पहला साइकिल इस संसार में कब चला था, ये कोई नहीं बता सकता। है ना, ये हम फिर भी कह सकते हैं कि ठीक है ये संसार सतयुग से शुरू हुआ था या कुछ एक पॉइंट को हम मान सकते हैं, पर ऐसे 5000 वर्ष के कितने साइकिल इस सृष्टि में अब तक घूम चुके हैं वो कोई नहीं बता सकता कि ये पहला साइकिल है, ये 5000वां साइकिल है, ये 10000वें नंबर का साइकिल चल रहा है, वो नो वन कैन कॉम्प्रीहेंड। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है राजयोग मेडिटेशन। हमने देखा कि मैं कौन थी, मैं कैसी हूं, मैं किसकी हूं, सृष्टि चक्र पे मेरा क्या पार्ट है, कौन कौन से नियम मेरे ऊपर लागू होते हैं, जब मैं कर्म करती हूं मैं आत्मा, तो वो कौन कौन से नियम हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, किस तरह से हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि इन सब से जो हमने देखा ना अभी एंट्रोपी 1 से 0 पे वापस कैसे आएगी, उसके लिए परमात्मा आकर के हमें शक्ति देते हैं और वो हमें राजयोग सिखाते हैं। तो वो राजयोग आखिर क्या है? राजयोग एक हमारी अंतर चेतना की यात्रा है कि हम अपने सत्य स्वरूप को, एक है नॉलेज कि मैं आत्मा हूं और दूसरा है एक्सपीरियंस कि मैं सच में अनुभव करूं कि मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूं। तो वही जब हम, एक है नॉलेज वाला पार्ट तो कॉन्सेप्चुअल है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जब तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया कि मैं आत्मा हूं तो वो कॉन्सेप्ट यूजफुल नहीं है। तो राजयोग मेडिटेशन वो तकनीक है जिसके द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं आत्मा का और परमात्मा का, परमात्मा की शक्तियों का और आत्मा का। फिर है राजयोग मेडिटेशन जब हम करने बैठते हैं, राजयोग ध्यानाभ्यास की पद्धति जो हम सब करते भी हैं, सीखते भी हैं, तो उसको करने के लिए हमें किस तरह की तैयारी चाहिए होती है? पूर्व तैयारी सबसे पहले है वातावरण, कि हम जहां पर भी योग करने के लिए जिस स्थान को चुने वो स्थान थोड़ा खुला खुला हो, साफ हो, स्वच्छ हो, वहां पर बहुत ज्यादा आसपास की शोर बातें ना हो, वहां टीवी की आवाजें ना चल रही हो, तो उसको हम कहें वो स्थान हम योग के लिए चूज करेंगे, जहां बहुत ज्यादा लोगों का जिस रास्ते पर आना जाना ना हो ना, घर में भी कोई ऐसा कॉर्नर जहां पर बार 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 कोई भी एक्टिविटी ना हो रही हो, नहीं तो उधर लोग दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं या मेडिटेशन करें तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो हमें सबसे पहले एनवायरमेंट और प्लेस सेट करना होता है कि हमें कहां बैठ करके मेडिटेशन करना है, उसके बाद अपने मन को सेट करना, माइंड को सेट करना। वास्तव में मेडिटेशन जो है वो एक थॉट मैनेजमेंट है कि हम अपने संकल्पों को मैनेज करें। हम घर को मैनेज कर लेते हैं, पैसे को मैनेज कर लेते हैं, चीज लोगों को मैनेज कर लेते हैं, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज किया जाता है, लेकिन हम अपने संकल्पों को कैसे मैनेज करें वो एक विधि है राजयोग मेडिटेशन। तो जब हम योग में बैठते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड, मन को सेट करें कि आज मुझे बैठ के क्या करना है। हम 10 मिनट बैठे हैं तो मुझे 10 मिनट में शांति का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है, वो हम पहले से ही सोचकर अपने साथ एक एम लेकर के बैठे। फिर दूसरी जो बात है वो है कि जब हम राजयोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारी आंखों की स्थिति क्या होती है? आंखें हमारी खुली रहती है और वो नेचुरल रूप से खुली रहती है, बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी, एकदम बंद भी नहीं, नॉर्मल हमारी विजन, हम आंखें खोल करके योग में बैठते हैं ताकि हमारी बुद्धि इधर उधर ना भटके। और हमें कितनी बार मेडिटेशन करना चाहिए? तो एक दिन में कम से कम, जैसे जो समय है सुबह अमृत वेला योग, शाम का योग, अगर हम पूरा पूरा समय सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1 घंटा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन में 15 मिनट से आधे घंटे का समय हमें योग के लिए, योग अभ्यास के लिए जरूर निकालना चाहिए। और दिन में उसी प्रैक्टिस को अगर हो सके तो 4-5 बार हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। फिर है स्टेजेस ऑफ राजयोगा। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बहुत सारी, ये क्योंकि ये एक अंतर यात्रा है तो इस यात्रा के अलग अलग स्टेजेस आते हैं। तो पहला है इनिशिएशन, कि अभी हम योग में बैठे हैं और फिर हम अपने मन के अंदर संकल्प क्रिएट करना शुरू करते हैं कि अभी तो बहुत सारी, एकदम से कहीं से आए बहुत सारे संकल्प अंदर में चल रहे थे, एकदम से बैठे तो हमने अपने आप को स्थिर किया कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, और उन ज्ञान के बिंदुओं का चिंतन करते हुए हम मेडिटेशन की स्टेज पर पहुंचते हैं। मतलब हम अपने विचारों को अब मैनेज करने लगे। जो दूसरे दूसरे विचार आ रहे थे उसकी जगह हमने अब श्रेष्ठ विचारों को सृजन करना, क्रिएट करना शुरू किया। उसके बाद हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है कि मान लो मैं आज शांति के अनुभव के लिए बैठी हूं, तो मैं अब शांति का अनुभव करने की स्थिति में आती हूं, एकाग्र होता है ध्यान। और जैसे ही ध्यान एकाग्र होता है तो हमें सच में अनुभव होता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, इस शरीर की चैतन्य शक्ति हूं। तो ये राजयोग की चार स्टेजेस हैं। जब हम योग में बैठते हैं तो हम इन चारों स्टेजेस से क्रॉस होते हैं। फिर है राजयोग के क्या क्या फायदे हैं। तो राजयोग से हमें पांच प्रकार के फायदे होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स, मतलब शारीरिक लाभ भी है हमें, हमारे शरीर की भी कई सारे रोग हैं जो हम जब योग करते हैं तो धीरे धीरे वो रोग हील होने लगते हैं। दूसरा है सामाजिक बेनिफिट्स भी है कि राजयोग के आधार से हमारे जीवन में जो मूल्य हैं, जो आत्मा के सात गुण हैं जो दब गए थे, वो फिर से रीइमर्ज होने लगते हैं। तो हमारा जो सामाजिक व्यवहार है उसमें हम श्रेष्ठ व्यवहार कर पाते हैं। फिर है मेंटल बेनिफिट्स। मेंटल बेनिफिट्स, यहाँ एक पिक्चर दिखाया है जिसमें एक तरफ लिखा है, एक हाथ पे लिखा है पल्स और दूसरे पे लिखा है स्लैब। पल्स माना एक हाथ जो कभी दोस्ती के लिए आगे बढ़ता था, वही हाथ कहीं स्लैब के लिए ना आगे बढ़े। माना हमारे मन के अंदर बदले की भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं जो है वो धीरे धीरे राजयोग के अभ्यास से परिवर्तन होने लगती है। और फिर हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट, आध्यात्मिक लाभ, कि हमें अपने सत्य स्वरूप की पहचान होती है, हमें परमात्मा की पहचान मिलती है और उसके आधार से हमारा चरित्र निर्माण होता है, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण होता है। फिर लास्ट है प्रोएक्टिव एंड इंटरएक्टिव पावर्स। राजयोग के अभ्यास से आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। प्रोएक्टिव का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कोई सिचुएशन आई ना हो, उससे पहले हमारे पास इसके लिए जो तैयारी होगी उसको हम कहेंगे प्रोएक्टिव, है ना। अभी कोई भी, जैसे हम बाहर निकले और हमें पता है मौसम खराब है, तो हम पहले से ही छाता लेकर के जाएंगे। तो यह है प्रोएक्टिव अप्रोच टू द सिचुएशन। और इंटरएक्टिव मीन्स, अब ठीक है सुबह गए थे जब तो कुछ नहीं था, ऑफिस पहुंच गए, अब ऑफिस से आने लगे तो आधे रास्ते आए, फिर रास्ते में जोर से बारिश आने लगी, अब तो छाता नहीं है, तो उस समय हम जो प्रतिक्रिया करेंगे, उस समय जिस तरह से हम अपने आप को बारिश से बचाएंगे, वो क्या हो गई हमारी इंटरएक्टिव अप्रोच। तो ये जो हमारी अष्ट शक्तियां हैं आत्मा के अंदर, जैसे पहली है पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। दूसरी शक्ति हमें राजयोग से मिलती है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। जो भी कुछ व्यर्थ का विस्तार है, व्यर्थ विचारों का विस्तार है, उन सबको समेटने की, ताकि हम हर समय अवेलेबल रह सकें कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। फिर है पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति बढ़ती है। पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। इसके लिए समुन्दर का एग्जाम्पल भी देते हैं कि समुन्दर के अंदर सब कुछ समा जाता है। फिर आगे है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति, सही क्या है गलत क्या है ये परखने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति कि कोई भी बात आई है तो उसमें हम अपना सही निर्णय दे सकें, उसके लिए राजयोग से हमें बहुत मदद मिलती है। फिर है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। जीवन में विपरीत परिस्थितियां, तरह तरह की सफलताएं असफलताएं सब कुछ जीवन में आती हैं, उन सबको सामना करने की शक्ति भी राजयोग से मिलती है। एंड पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं ना कि एक एक उंगली मिलकर के गोवर्धन पर्वत उठा सकती है, तो ऐसे ही श्रेष्ठ कार्य में सहयोग करने की शक्ति हमें राजयोग से मिलती है। ठीक है, इसी के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। हमने इसमें आज सात चीजें देखी। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कैसी आत्मा हूं? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, वो हमने सेल्फ एस्टीम में देखा। थर्ड हमने देखा मैं किसकी हूं, तो मैं परमात्मा की संतान हूं। चौथा, इस सृष्टि चक्र में मेरा क्या पार्ट है, कैसे हम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अपना पार्ट बजा रहे हैं। पांचवा हमने देखा कि जब हम पार्ट बजा रहे हैं तो कौन कौन से नियम हमारे साथ साथ, सृष्टि के नियम हमारे साथ साथ चल रहे हैं। फिर छठा हमने देखा कि राजयोग मेडिटेशन क्या है, किस तरीके से हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, और सातवां हमने देखा राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसी के साथ ओम शांति। थैंक यू।